तो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए बहुत प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने आपको कहा, अभी हम शुरू करने वाला है ये विषय और ये पाठ जो है, ये एक हम ये कह सकते हैं ये शिक्षा का आरंभ, मतलब अभी तक जो अभी तक जो हमने देख के आ चुके हैं, ये सब जो है आम तौर से हमने बहुत सारे बातों देखे, लेकिन आज तो हम शुरू करने वाला है शिक्षा, मतलब उपदेश, डॉक्ट्रिन, जो परमेश्वर के वचन में कहता है इस बात के बारे में। आज के विषय जो हम देखने वाला है वो है मनुष्य का आत्मा। तो मनुष्य का आत्मा की बात देखते वक्त हम आज हम देखेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प पढ़ाई है, इसका बहुत सारा सवाल आपके पास होंगे और आज परमेश्वर के वचन में इसका सच्चाई तो हम देख लेंगे। आत्मा क्या चीज है? क्या आत्मा, और देखो हिंदी में एक और मुश्किल क्या है, अंग्रेजी में दो शब्द है, सोल स्पिरिट, लेकिन हिंदी में देखा जाए तो आत्मा आत्मा प्राण प्राण और आत्मा, तो प्राण तो सोल और आत्मा तो स्पिरिट। जो प्राण और आत्मा का फर्क है, कैसे हम समझे ये बात, क्या दोनों एक है प्राण और आत्मा, या प्राण और आत्मा अलग अलग है? प्राण तो क्या है, देख सकते हैं प्राण? आत्मा तो देख सकते हैं? तो दोनों प्राण और आत्मा अनदेखी है हम सोच रहे हैं। तो आज तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में ये बात क्या बताता है, लेकिन उससे पहले हम साधारण रूप में देखेंगे कि बाकी सारे लोगों, जैसे जैसे हिंदू मुसलमान बुद्ध और वगैरह बाकी सारे लोगों के विश्वास क्या है इस बात के ऊपर। अगर आप हिंदू के पास जाके पूछे कि आप आत्मा के बारे में अर्थात प्राण के बारे में आप क्यों क्या सोचते हैं, उनके पास के मुताबिक हम देखते हैं वो लोग विश्वास करते हैं कि मनुष्य के पास एक आत्मा है, मनुष्य के पास एक प्राण है, सोल है, जो मरने के समय में निकल जाता है, बाहर आता है, और माउथ में शरीर मरता है, लेकिन ये सोल, ये जो प्राण है, ये जो आत्मा है, ये नहीं मरता है, ये तो अमर है, ये तो इनका विश्वास है। तो हिंदुओं के पास अगर हम पूछे जाए तो हम देखते हैं उनके विश्वास के अनुसार आत्मा नहीं मरता है, आत्मा देखी है, और आपको भी जानता है और सुन ले भी होंगे कि उनके विश्वास के अनुसार बार बार आत्मा पैदा होता है, और बार बार पैदा होते होते उनका मकसद है कि परमात्मा के पास कोई जाके मिलना है, जाके जोड़ना है। तो ये हिंदुओं का विश्वास है। अभी मुसलमान के पास पूछे जाए तो मुसलमान से अगर ये सवाल पूछे तो मुसलमान कहते हैं हम भी विश्वास करते हैं रूह, अल्लाह ने शुरू में रूह को उत्पन्न किया, रूह को उत्पन्न करके धरती पे भेजा। तो जब मनुष्य मर जाता है, शरीर मरता है, ये रूह तो नहीं मर सकता है, और इस रूह का न्याय होता है, और अल्लाह एक तो ये रूह को सजा देगा या तो इन रूह को नरक में भेजेगा। तो ये मुसलमानों से भी हम अगर ये सवाल पूछते तो हम क्या देखते हैं कि सवाल का जवाब एक ही है। जैसे हिंदू विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा अनदेखी है, इन लोगों को भी विश्वास वैसे ही है, लेकिन कहानी सिर्फ अलग है, कहानी अलग अलग है, मुसलमान का कहानी अलग है, हिंदू का कहानी अलग है, लेकिन दोनों का विश्वास ये आत्मा के बारे में बराबर है कि आत्मा नहीं मरता है, अमर है, और आत्मा अनदेखी है। इसी बात को अगर आप बुद्ध बुद्ध बुद्धिस्ट से पूछे जाए तो बुद्धिस्ट का विश्वास तो हम क्या देखता है कि बुद्धिस्ट का विश्वास के अनुसार एक एक बुद्धिस्ट का प्रयास है कि वो मोक्ष पाए। मोक्ष का मतलब क्या है? वो बार बार जन्म लेने से छुटकारा हो जाए। बार बार जन्म लेने में बुद्ध के विश्वास के अनुसार वो ना सिर्फ मनुष्य के रूप में बल्कि पक्षी, जानवर, ये मच्छर और ऐसी जानवरों से ऐसी जान में भी एक आत्मा अंदर के पैदा हो सकता है। तो एक बुद्ध के विश्वास के अनुसार हम क्या देखते हैं, ये लोग विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मर सकता है। मनुष्य मरने के वक्त में सिर्फ शरीर मरता है, उनके शरीर से बाहर निकल के आता है ये आत्मा और दोबारा जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है और वो अनदेखी है, किसी को नहीं देखता आत्मा। तो मुसलमान, हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों तीनों का विश्वास एक जैसे है। उसी तरह अगर बाकी सारे धर्मों, अगर आप जैन में जाए या सिखिज्म में जाए, सभी का विश्वास क्या है कि आत्मा अमर है, नहीं मर सकता है और अनदेखी है, नहीं देख सकता है। हमारे मसीह के बीच में दो झुंड है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अगर आप रोमन कैथोलिक से पूछा जाए, रोमन कैथोलिक का विश्वास क्या है कि आत्मा अमर है, नहीं मरता है। मौत में शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं, इसलिए आत्माओं के लिए खास एक दिन भी रखा है, नवंबर के महीने में 2 तारीख आत्माओं का दिन। उस दिन में रोमन कैथोलिक लोग सभी कब्र को जाते हैं और ढूंढते हैं उनके रिश्तेदारों का कब्र, और वहां जाके जो लोगों को पसंद करते थे जब वो जिंदा था, जैसे कोई खाने का चीज या पीने का चीज उधर डाल के रखते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। उनके पास के अनुसार है वो आत्मा अभी भी जिंदा है और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। तो ये रोमन कैथोलिक के विश्वास है। रोमन कैथोलिक के विश्वास के अनुसार वो लोग क्या बोलता है कि जब एक मनुष्य मरता है, जब एक रोमन कैथोलिक मरता है, तुरंत उस मनुष्य का न्याय होता है। उस न्याय होने के बाद तुरंत उसको एक तो स्वर्ग में भेजा जाएगा या तो नरक में भेजा जाएगा, या अगर वो ना स्वर्ग के लिए काबिल है और ना नरक के लिए काबिल है, उनके विश्वास के अनुसार एक तीसरा स्थान परगट्री में भेजते हैं। वहां उनके थोड़े कुछ कठिन अनुभवों के बाद वो भेजता है स्वर्ग, ऐसा इनका विश्वास है। लेकिन ऐसा इसके लिए वचन का कोई आधार नहीं है और ये तुरंत न्याय का उनके विश्वास के वचन के आधार हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और 12वां वचन। जी,
अति मैं मूर्तियां की बड़े की छोटे सिंहासन दे अगे खलोतियां वेखिया, अतियां खोलियां गईयां, अते खोर पोथी जेरी जीवन दी पोथी है खोली गई, अते मूर्तियां दा न्याय पोथियां विच लिखिया होईयां गल्लां तो उना दियां सबनियां संसार जीता गया।
तो इस वचन के अनुसार रोमन कैथोलिक लोग विश्वास करते हैं कि जब कोई रोमन कैथोलिक मरते हैं तुरंत उनके न्याय होता है, और इसके मुताबिक एक तो स्वर्ग का आशीर्वाद मिलते हैं, नहीं तो नरक का भेजने का है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस हम बताते हैं कि उनका विश्वास क्या है। लेकिन अगर हम देखा जाए, कहानी तो अलग अलग है, लेकिन रोमन कैथोलिक भी हिंदू की जैसे मुस्लिम की जैसे मानते हैं कि आत्मा नहीं मरता है। आत्मा अमर है और आत्मा अनदेखी है। अभी हम प्रोटेस्टेंट्स को देखेंगे। प्रोटेस्टेंट्स मतलब जो रोमन कैथोलिक से बाहर आके प्रोटेस्टेंट्स है। अगर प्रोटेस्टेंट से पूछा जाए प्रोटेस्टेंट्स के विश्वास के अनुसार क्या है कि उदार करने का एक ही रास्ता है, अर्थात स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, यीशु को अपनाना है। अगर यीशु को अपनाते हैं तभी तो मरने के बाद स्वर्ग को मिल सकता है। इस विश्वास के अनुसार है प्रेरितों के काम 4:12। इस वचन के आधार में उनके विश्वास ऐसा होता है। प्रेरितों के काम 4:12। तो इसका विश्वास इन 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 प्रोटेस्टेंट लोगों के विश्वास के अनुसार क्या बोलता है कि अभी अभी है उद्धार का समय। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपनाते नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं करें तो इसके बाद कोई मौका नहीं है। तो उसके विश्वास के अनुसार हम क्या देखते हैं, विश्वास करते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह अपनाते हैं सिर्फ वो लोग स्वर्ग को जाएंगे मरने के बाद और बाकी सब नरक को जाएंगे। इसका 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 असली या झूठ ये आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्टेंट वाले भी रोमन कैथोलिक के जैसे, हिंदू के जैसे, मुस्लिम के जैसे उसी विश्वास रखते हैं कि कहता है आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर है और आत्मा अनदेखी है। तो जैसे हम सारे के सारे धर्मों को देख के जाए कि सभी का विश्वास एक जैसा है। अभी आपको जान रहे होंगे कि ये विज्ञानी भी है, साइंटिस्ट, और ये विज्ञानी जो है वो ज्यादातर परमेश्वर के ऊपर और धर्म के ऊपर विश्वास नहीं रखता है। तो अगर आप विज्ञानी के पास जाके पूछते हैं कि आपका विश्वास क्या है इस बात के बारे में, आत्मा के बारे में, वो कहता है कि हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। एक आदमी मरते वक्त उनको एक केस में, ग्लास शीशे का केस में बंद किया, खाली वो उनके जान को रखने के लिए वो वायर जो मशीन्स को कनेक्ट करने के वही उसके लिए भी उसके लिए ही जगह था, बाकी कोई जगह नहीं था। पूरा का पूरा केस बंद था, कैमरा रखा था, देखेंगे क्या होता है। और देखा कि वो आदमी जब वो अपने आखिरी सांस छोड़ दिया, एकाएक वो शीशे का जो केस टूट गया। और ये विज्ञानी बोलता है लगता है मनुष्य की मौत के बाद कुछ न कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ कोशिश किया बाहर आने के लिए। जब ये शीशा एक रुकावट था, ये शीशा को भी टूट के बाहर आ गया। तो मेरे हमारे को लगता है आत्मा जो कहता है, आत्मा जो चीज जो कहता है मनुष्य के अंदर जो मौत के बाद निकल जाता है वो सही जैसा लगता है, विज्ञानी भी कहता है। तो कुल मिला के इतने सारे लोगों के पास जब हम ये सवाल पूछा आप क्या मानते हैं, विश्वास मानते हैं ये आत्मा के बारे में, सब लोग कहता है, कहानी अलग अलग है, डिटेल्स अलग अलग है, लेकिन लोग कहता है आत्मा है, आत्मा अनदेखी है और आत्मा नहीं मरता है। अभी हम सवाल पूछते हैं ये वचन क्या कहता है। आप बोलेंगे ब्रदर अभी अभी हम देखा है रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग वचन के ऊपर क्या विश्वास करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, फिर भी बोलता हूं ये वचन क्या कहता है आत्मा के बारे में। क्या आत्मा मर सकता है? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे धर्म कहता है, लेकिन ये वचन क्या कहता है। ये वचन में हाँ भाई हम पढ़ेंगे एहेजकेल की किताब, एहेजकेल की किताब 18:4, एहेजकेल 18:4।
ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਵੈਸੀ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਯੇ ਜਾਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਹਮ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋ ਔਰ ਵੀ ਯੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸਮਝੇਂਗੇ, ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋ ਅੱਛੇ ਰਹੇਗੇ। ਐਨ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੋ ਚਲੋ ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੇ ਤੋ ਹਮ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਹੋਲਡ ਆਲ ਸੋਲਸ ਆਰ ਮਾਈਂਡ,
ਦੇਖੋ ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਪੜੋ,
ਐਸ ਦ ਸੋਲ ਆਫ ਦ ਫਾਦਰ ਸੋ ਆਲਸੋ ਦ ਸੋਲ ਆਫ ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ, ਦ ਸੋਲ ਦੈਟ ਸਿਨੈਟ
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 ਯਾ
ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਡਾਈ।
ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਾਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਆਤਮਾ ਮਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਕਾ ਆਪਕਾ ਪੰਜਾਬੀ।
ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ।
ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੋ ਮਰੇਗੀ। ਅਭੀ ਆਪ ਬਤਾਓ ਜਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਜਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ। ਅਗਰ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਨਾ, ਜਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਆਤਮਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਯੇ ਐਸਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੇ ਜਬ ਉਲਝਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਛਿਪ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇ ਲਿਏ, ਔਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਮੇ ਯਹਾਂ ਹਮ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਯੇ ਸੋਲ ਹੈ। The soul that sinneth it shall die. वचन कहता है आत्मा जो पाप करते हैं वो आत्मा मरेगा, वो आत्मा मरेगा। बहुत आश्चर्य की बात है। 20वां वचन,
The soul that sinneth it shall die.
दोबारा वही बात है, वही शिक्षा कि आत्मा जो पाप करते हैं वो आत्मा मरेगा। आपके पंजाबी में
जड़ी जान पाप करती है वो मरेगी।
हाँ, जड़ी जान पाप करती है वो मरेगी। अभी ये आश्चर्य की बात जो हम वचन में पढ़ते हैं, आत्माओं का मौत के बारे में वचन कहता, आत्माओं के मौत के बारे में। दोबारा एक और वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से, भजन संहिता 22वां अध्याय 29वां वचन, भजन संहिता 22:29।
धरती दे सारे सारे लोग खाणगे अते ओनु मत्था टेकणगे, ओ सबे जो खाक विच उतर दे हन ओदे अगे चुकणगे, अते कोई जान जीउंदी नहीं रख सकता।
हाँ, जान कोई जीवन जीवित नहीं रख सकता। अभी अंग्रेजी में पढ़ेंगे,
ऑल दे दैट बी फैट अपॉन द अर्थ शैल ईट एंड वर्शिप, ऑल दे दैट गो डाउन टू द डस्ट शैल बो बिफोर हिम, एंड नन कैन कीप अलाइव हिज ओन सोल।
देखो एक भी आदमी एक भी इंसान अपने आत्मा को जीवित नहीं रख सकता है, अर्थात हर एक आत्मा मरता है। देखो ये ठीक है, सारे के सारे लोग के विश्वास के उल्टा, हिंदू मुसलमान बुद्ध रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सभी के विश्वास से उल्टा। वचन कहता है जो आत्मा पाप करते हैं वो आत्मा मरते हैं। अभी आप सोच लो, कोई भी है जो पाप नहीं करता है, कोई भी है जो पाप में नहीं है, सभी तो पाप में है, तो सभी आत्मा मरते हैं। इसलिए भजन संहिता 22:29 क्या कहता है, एक भी अपने आत्मा को जीवित नहीं रख सकता है, एक भी नहीं, क्योंकि सभी तो पाप ही है। पाप जो करता है उसका क्या होता है, मरता है। तो यही बात तो देखो वचन में क्या, अभी देखो ये जो शिक्षा, ये कोई नया शिक्षा नहीं है, ये तो कोई नया शिक्षा नहीं है, ये तो शिक्षा तो वचन ही बार बार कहते कह के आ रहा है, लेकिन हम तो इसका ध्यान नहीं दिया। अभी आपको थोड़ा 3 पुराना नियम के वचनों का उदाहरण निकाल के बताएंगे। कभी कभी आत्मा शब्द भी नहीं आता है, लेकिन मालूम होता है कि वो साफ साफ कहता है कि आत्मा मरता है। वचन में पढ़ लीजिए 3 वचन, भजन संहिता ही हम निकालेंगे, भजन संहिता 33वां अध्याय और 19वां वचन, भजन संहिता 33:19।
पयुना दी जान मौत तो छुड़ावे अते काल विच उना नु जीउंदिया रखे।
देख लो, तो हमारा जान किधर से बचना है, मौत। अगर 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 एक आत्मा मर नहीं सकता, बचने का क्या बात है? आत्मा मरता नहीं और मर नहीं सकता, बचने की क्या बात है? इसलिए कि वो एक आत्मा मर सकता है तो बात आता है बचने का, है कि नहीं? तो ये देखो अंग्रेजी में पढ़ेंगे अभी,
टू डिलीवर देयर सोल फ्रॉम डेथ।
टू डिलीवर देयर सोल फ्रॉम डेथ। देखो ये अनुवाद का बड़ा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अनुवाद से ही एक तो सच्चाई कट होता है या तो सच्चाई छिप जाता है। तो ये बात आप याद में रख लेना, अंग्रेजी रखो, हिंदी रखो, पंजाबी रखो, साथ साथ में देख लो, परख के देखो और आप मालूम हो जाएगा इसका बात क्या है। तो देखो, टू डिलीवर देयर सोल फ्रॉम डेथ, इसलिए कि एक आत्मा मर सकता है तो उसको बचने की बात है ना। अगर अगर जैसे सब लोग मान रहा है और विश्वास कर रहा है कि एक आत्मा बिल्कुल नहीं मर सकता है, तो बचने की बात ही नहीं है ना। एक वचन है, एक और वचन, बनीता 40वां अध्याय 14।
जो मेरा प्राण की खोज में है वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं।
देखो मेरे हानि, हानि का मतलब क्या है? मेरा 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 प्राण को नाश करने के लिए। अंग्रेजी में पढ़ेंगे,
लेट देम बी अशेम्ड एंड कंफाउंडेड टुगेदर दैट सीक आफ्टर माय सोल टू डिस्ट्रॉय इट,
टू डिस्ट्रॉय इट। देखो ये इतने हल्का सा ये बातें हैं कि हम पढ़ के ये समझ नहीं लेते कि ये क्या कह रहा है, ये वचन क्या कह रहा है। ये वचन कह रहा है कि एक आत्मा मर सकता है, एक आत्मा नाश हो सकता है, एक आत्मा का सर्वनाश हो सकता है, ये वचन कह रहा है। लेकिन इतने दिन हम क्या मान रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एक आत्मा बिल्कुल नाश नहीं हो सकता है, एक आत्मा बिल्कुल मौत नहीं हो सकता है, एक आत्मा अमर है। लेकिन ये वचन नहीं कहता है आत्मा अमर है, बल्कि ये उल्टा कहता है कि आत्मा नाश होता, हानि होता है, आत्मा नाश हो जाता आत्मा। एक और वचन, भजन संहिता 56:13, 56:13। तो तुम क्यों, क्योंकि तुम मेरे को मृत्यु से बचाया है, मेरे, लेकिन अंग्रेजी में मेरे आत्मा को मृत्यु से बचाया है। पढ़ो पढ़ो,
फॉर थाउ हैज डिलीवर्ड माय सोल फ्रॉम डेथ।
देखो, डिलीवर्ड माय सोल फ्रॉम डेथ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ 3 पुराने नियम से मैंने उदाहरण निकाल के आपको दिखा रहा, और बहुत सारे वचन है, लेकिन सिर्फ 3 में निकाल के आपको बता रहा है कि पुराना नियम में साफ साफ बताता है आत्मा के नाश के बारे में, आत्मा के मौत के बारे में, आत्मा के सर्वनाश के बारे में। अभी नया नियम में देखेंगे, नया नियम में दो वचन लेंगे, याकूब जेम्स 5वां अध्याय 20वां वचन, याकूब 5:20।
बढ़ते हुए पापी को फिर एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा,
प्राण मृत्यु से बचाएगा, लेकिन इंग्लिश में
लेट हिम नो ही which that he which convert the sinner from the error of his ways shall save a soul from death.
Save a soul from death. देखो मौत से बचाएगा जान मौत से बचाएगा तो लगता है पंजाबी में जान सोल के लिए जान है और हिंदी में प्राण है प्राणी और प्राण है तो इसमें लगता है और भी बहुत रिसर्च करनी है अगर हम पंजाबी में सच्चाई बताना है और हिंदी में बताना है सही शब्द को इस्तेमाल करना है देखो हिंदी में आत्मा का शब्द है तो प्राण का शब्द है लेकिन प्राण का मत मेरे ख्याल से एक जीते हुए जान एक लिविंग बीइंग है ना उसको प्राण कहता है लेकिन एक सोल वो आत्मा कहता है पिक्चरों में भी बनाते हैं आत्मा 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 मतलब है सोल तो ये कंफ्यूजन हो रहा है बहुत उलझन हो रहा है और जब जब तक ये बात साफ नहीं है हमारा समझदारी भी नहीं आएगा लेकिन अंग्रेजी में बहुत साफ है अंग्रेजी में बहुत साफ है अंग्रेजी में कहता है आत्मा सोल अभी एक और वचन पढ़ेंगे नया नियम में प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय 23वां वचन 323
देखो
मैं बॉन्जर के अंदर एक एक वचन के अंदरूनी मतलब में ले नहीं गया बस सिर्फ देख रहा है ऊपर से कि आत्मा के बारे में क्या बोल रहा है वचन आत्मा के बारे में क्या वचन कहता है कि आत्मा नाश होता है किसके कारण से पाप के कारण से जिस आत्मा पाप करता है उसके आत्मा मरता है यही वचन साफ साफ बता रहा है अभी थोड़े लोग तो बहुत होशियारी से बोलते हैं हाँ हाँ वो है स्पिरिचुअल डेथ मैं चैलेंज करता हूं किसी को जो ऐसे बात करते हैं वचन में एक भी जगह जहां वो शब्द आता है स्पिरिचुअल डेथ आता है बाइबल में नहीं और जो शब्द बाइबल में इस्तेमाल नहीं किया जाता है हम इस्तेमाल नहीं करना है हम तो सेवक इसलिए है कि वचन को आपको दिखाए हम तो सेवक इसलिए नहीं है कि बाहर से कोई वचन शब्द लेके आए और आपको सिखाए जो वचन में नहीं है ये गलत सेवा है तो प्यारे भाई बहनों यहां तो बहुत साफ साफ दिख रहा है पुराना नियम में और नया नियम में कि आत्मा के मौत होता है वचन में भाई अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक सवाल अभी आपसे पूछना है क्या प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मरा प्रभु यीशु मसीह मरा ना कलवारी में तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मरा क्या सोचते हैं नहीं ऐसा बोलते हैं ना लेकिन वचन में देखेंगे कि वचन क्या कहता है इस बात के बारे में 26वां अध्याय 38वां वचन मत्ती 26:38 मेरा जी इतना उदास है मरे मरने का पीड़ा में एहसास कर रहा है अभी अंग्रेजी में पढ़ेंगे
Then said he unto them, My soul is exceeding sorrowful even unto death.
अरे अगर इनका इनका आत्मा नहीं मर सकता है तो क्यों बोलेंगे कि मेरा आत्मा इतने दुखी है कि मरे जैसे मौत तक पहुंचे जैसे उदास क्यों हो क्यों कहता है प्रभु यीशु मसीह क्योंकि उसके आत्मा भी मर सकता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मौत उनके आत्मा के मौत के लिए नहीं है उनके पाप के लिए नहीं है बल्कि हमारे पाप के लिए कुर्बानी का मौत कुर्बानी का माउथ, उनके आत्मा का क्या हो गया, कुर्बानी का माउथ। ये बात तो पुराना नियम में यशाया का किताब, यशावा का किताब 53वां अध्याय 12वां वचन में पढ़ते हैं, यशावा 53:12 53:12। उनका प्राण मृत्यु के लिए उंडेल किया। वचन पढ़ो हिंदी इंग्लिश में।
Therefore I will divide him a portion with a great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death.
अपने आत्मा माउथ में उंडेल किया, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर माउथ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पापी नहीं है। जो पाप करते हैं उसके माउथ उसके उसके आत्मा क्या होता है,
मरेगा।
लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, हमारे पापों के लिए अपनी जान क्या किया, दे दिया। तो इसका 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 भाषा क्या कहता है कि उनकी आत्मा हमारे लिए उंडेल कर दिया है, उंडेल कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा भी मरा कुर्बानी मौत का, उनके आत्मा का कुर्बानी मौत था। तो यहाँ हम देख रहे हैं। अभी एक और सवाल आपके अंदर अभी बहुत उलझन आगे होंगे, बहुत कंफ्यूजन आगे होंगे, क्या क्या की नए नए बात सुन रहे हैं, ये क्या चीज है। जरा सब्र में रहो, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे बात साफ होने वाला है। अगले एक सवाल है, क्या आत्मा को आत्मा के पास खून है। ब्रदर ये पागल की जैसे बातचीत हो रहा है इधर। ये क्या आत्मा के पास खून है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे ना, लेकिन वचन बोल, देखो वचन क्या कहता है, क्या आत्मा के पास खून है कि नहीं, वचन में पढ़ लेंगे। यिर्मयाह के किताब, यिर्मयाह के किताब 2 अध्याय 34वां वचन, यिर्मयाह 2:34।
नारे तेरे पल्ले उत्ते बेदोष कंगाला दिया जाना दा लहू लबिया।
जका जाना का लहू लबिया, किधर, कपड़े के ऊपर, पढ़ो इंग्लिश अंग्रेजी में।
Also on thy skirt is found the blood of the soul of poor innocent।
देखो blood of the souls, तो वचन के अनुसार एक आत्मा के पास लहू है। देखिए अगर लहू है तो देख सकता है आत्मा, क्योंकि लहू तो हम देख सकते हैं ना। अगर ये काटते आप दिखाए तो आपको क्या दिखेगा, मेरा लहू। तो आत्मा आत्मा दिखना है, वचन के अनुसार आत्मा दिखने वाला होना चाहिए ना, बिल्कुल। आत्मा के पास लहू है, आत्मा के पास लहू। देखो मैं सिर्फ बाहरी उदाहरण दे रहा, अंदर गहरा रूप में अभी तक गया नहीं, सिर्फ वचनों रखते हैं। आप मानते हैं ना, तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, तो मानने के अनुसार मैं बताता हूँ तेरा वचन आपको। तो ये वचन बहुत साफ साफ बताता है कि हर एक आत्मा के पास लहू है, तो आत्मा दिखने वाला होना चाहिए। और अगले सवाल क्या है कि आत्मा, क्या आत्मा के बारे में हम वचन में पढ़ेंगे। योशुआ के किताब 11वां अध्याय 11वां वचन, योशुआ 11:11, योशुआ की किताब।
And thou smote all the souls that were therein with the edge of the sword.
एक तलवार से एक आत्मा काट सकता है, एक तलवार से आत्मा काट सकता है। वच पढ़ लो आपके पंजाबी में। देखो देखो ये देखो ये देखो ये एक ही वचन में जान को बदल के प्राणियों आ गया इधर। तो पंजाबी में ज्यादातर जान आता है, लेकिन यहाँ तो प्राणी आ गया है। हिंदी में तो तलवार से मार सकता है आत्माओं, तलवार से। आपको सोच रहे होंगे ये सब क्या बात है, लेकिन ये बात सही है कि तलवार से आत्मा को मार सकता है। और ये अभी सवाल उठता है कि ये आत्मा क्या चीज है, ये आत्मा क्या चीज है? क्योंकि अभी हम वचन से हम पढ़ लिया है और समझ लिया है, एक तो आत्मा देख सकता है क्योंकि आत्मा के पास लहू है, आत्मा तलवार से काट सकता है, और आत्मा मरते हैं, आत्मा का नाश हो सकता है। तो आत्मा क्या चीज है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, सीधा आत्मा का डिजाइनर के पास जाएंगे। आत्मा का डिजाइनर कौन है? पिता परमेश्वर। अभी सीधा पिता परमेश्वर के वाणी से सुन लेंगे, एक आत्मा क्या चीज होता है। उत्पत्ति के किताब 2:7
यहोवा परमेश्वर ने आदमी नु जमीन दी मिट्टी तो रचिया अते उस नसा विच जीवन दा सांप फूकिया तो आदमी जीवंदी जान होया।
जीवंदी जान, जान का मतलब है आत्मा, अंग्रेजी में पढ़ेंगे।
एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्मड द मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रेथ इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकम अ लिविंग सोल।
देख लो, ये वचन साफ साफ बताता है एक आत्मा क्या चीज है। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाने का मतलब क्या है? जैसे जैसे जब हम बीच पे जाते हैं, खेलते हैं उस समंदर के किनारे में, मिट्टी लेके जाते हैं, घर बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, ऐसा क्या परमेश्वर एक गुड़िया बना के उसके बाद फूका और उसके बाद मनुष्य बना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्टी से बनाने का मतलब है मिट्टी में जो सारे चीजा है, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, मैंगनीज, जिंक, लेड, जो सब जो जमीन पर के अंदर मिलता है ना, वो सब परमेश्वर थोड़ा थोड़ा लेके इस शरीर को क्या बनाया, रचाया। ये शरीर बनाने के बाद ये शरीर में जीवन नहीं था जब तक पिता परमेश्वर मनुष्य के नाक के अंदर सांस नहीं फूका। जब सांस फूका और सांस घुस गया अंदर, सांस क्या हो गया? घुस गया अंदर, वो शरीर जान पर आ गया और उसका नाम है जीवित आत्मा। इसलिए कि एक आत्मा जीवित है, वही आत्मा मरे हुए भी हो सकते हैं। तो एक जीवित आत्मा बनने के लिए चाहिए जो जो दो हिस्सा चाहिए। एक तो एक शरीर जो मिट्टी से बन जाता है और परमेश्वर देता है सांस। अंग्रेजी में ये है बॉडी और ये है स्पिरिट। बॉडी प्लस स्पिरिट बन जाता है लिविंग सोल, आत्मा। बॉडी प्लस स्पिरिट बन जाता है लिविंग सोल, आत्मा। एग्जाम्पल, इसको आपको ये बात को आपको समझाने के लिए, पानी जानते हैं ना, H2O, H2 हाइड्रोजन, दो पार्ट हाइड्रोजन प्लस O, वन पार्ट ऑक्सीजन, बन जाता है H2O, वाटर। देखो, हाइड्रोजन वाटर नहीं है, ऑक्सीजन वाटर नहीं है, लेकिन अगर H2 प्लस O मिलता है, बन जाता है वाटर। तो बॉडी, शरीर, शरीर का मतलब क्या है? अंग, हाथ, पैर, दिमाग, जुबान, सब कुछ जो 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 काम करने के लिए एक शरीर। लेकिन शरीर में जान नहीं है। शरीर को जान देने के लिए क्या देना है? स्पिरिट, सांस। ये शरीर को जब सांस देता है, बन जाता है आत्मा, सोल, सोल। अभी देखो, शरीर तो सोल नहीं है, ये सांस भी सोल नहीं है, लेकिन जब शरीर और सांस दोनों मिल जाता है, बन जाता है ए लिविंग सोल। ये है सच्चाई। इस सच्चाई के अनुसार हम सब के अंदर आत्मा नहीं है, समझो, हम सब के अंदर आ नहीं है, हम खुद ब खुद आत्मा है, समझ लिया। अगले बार अगर आप किसी आपसे पूछे जाए कि आपके अंदर आत्मा है तो बोलो नहीं। अरे तू मर गया? नहीं, मैं जीवित हूँ लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा नहीं है। आत्मा किसी के अंदर नहीं है, हम सब खुद ब खुद आत्मा है, जीवित आत्मा। लेकिन इसलिए कि हम सब पाप करते हैं, हम पाप के दंड के नीचे हैं, इसलिए हम सब मरते हुए आत्मा हैं। सभी का टाइम है मरने के लिए, क्योंकि पाप का मजदूरी है मौत। ये है वचन का सच्चाई। बहुत सरल है लेकिन बहुत टेंशन आता है, क्योंकि अब तक इतना सच्चाई हमने कभी सुना नहीं, ये बात हमने कभी सुना नहीं। लेकिन याद में रखो, मैंने सिखाया आपको डिजाइनर, आत्मा का डिजाइनर का शिक्षा है ये, उत्पत्ति 2:7। तो प्यारे भाई बहनों, मौत में क्या होता है मालूम? जो शरीर से एक आत्मा बन गया, शरीर, सांस, जीवित आत्मा, मौत में क्या होता है? सांस निकल जाता है, सांस निकल जाके परमेश्वर के पास जाता है, वो शक्ति, जान देने के शक्ति चले जाता है परमेश्वर के पास। शरीर के अंदर जान नहीं है, बू आता है, लेके जाके किधर डालता है? मिट्टी में डालता है, दोबारा मिट्टी हो जाती है। ये है आत्मा के मौत। उत्पत्ति 2:7 बताता आत्मा के उत्पन्न और प्रसंगी, नहीं सबोपदेशक ना, सबोपदेशक 12:7 बताता है आत्मा के मौत। सबोपदेशक 12:7
अतिक्रांत मिट्टी नाल पहला वांगू जा रले अति आत्मा परमेश्वर दे कोल मुड़ जावे जिसने उसनु बख्शिया सी।
देखो हिंदी में,
सब मिट्टी जो कि जो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी।
तो इंग्लिश में या 12:7
Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it.
ये है बंटवारा, आत्मा का बंटवारा। आत्मा का मिलन होता है शरीर, मिट्टी से बनाया हुआ शरीर और परमेश्वर का दिया हुआ सांस, ये जब मिल जाता है बन जाता है जीवित आत्मा। जब बंटवारा होता है तो आत्मा ना रहा, हम कभी कभी बोलते हैं ना मौत में, वो किधर है? वो ना रहा, ना रहा बराबर सच्चाई है, बराबर सच्चाई है। वो ना रहा का मतलब क्या है? वो अभी तक अभी जीवित आत्मा ना रहा, इसका मतलब ये है। अभी ये वचन कहता है ये सांस चले जाता है परमेश्वर के पास जिन्होंने दिया है। थोड़े लोग सोचता है कि ये सांस है आत्मा, आत्मा चले जाता परमेश्वर के पास। सोच लो, हर एक आत्मा चले जाता है, हर एक सांस। ओसामा बिन लादन का सांस चला गया परमेश्वर के पास, अमेरिका पंजाब के सबसे खतरनाक आदमी कौन है? रंगा और बिल्ला।
उधर से शुरू हुआ ये सारा ये आतंकवादी का काम ना,
क्या ये सबसे खतरनाक लोग? इनके आत्मा किधर? परमेश्वर के पास गया है कि नहीं? आप लोग क्या सोच रहे होंगे? नहीं 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 नहीं, तो जा नहीं सकता है, ये बहुत खतरनाक लोग है, बुरे लोग है ना। लेकिन ये बात आप समझना है, क्या चले जाता परमेश्वर के पास? सांस। सांस जाने का मतलब क्या है? सांस के पास हाथ पैर है, सांस के पास पंख है, तो कैसे चले जाता है सांस? चले जाता है परमेश्वर के पास, इसका मतलब क्या है ये आपका समझना है। अभी देखो, कभी कभी हम रहते हैं बाड़े के घर में, और कभी कभी हम रहते हैं लीस के घर में। लीस आपको जानते हैं ना, 3 साल का लीस है, एक एक बल्क का पैसा देता है और 3 साल के बाद देता है और लीज खत्म हो जाता है। तो जब वो लीज खत्म हो जाता है, एक दिन पहले हम क्या कहते हैं, कल ये लीज ओनर के पास चले जाता है। इसका मतलब क्या है, ये 3 साल इस घर में हम रहा क्योंकि हमने पैसा दिया उनको और वो हमारे को 3 साल का समय दिया, कल ये 3 साल खत्म हो रहा है। तो कल से इस घर में हम नहीं रह सकते हैं, इस घर का जो ओनरशिप वापस जाएगा ओनर के पास। ऐसा नहीं कि लीज के पास हाथ पैर है चलने के लिए या लीज के पास पंख है उड़ने के लिए, है कि नहीं। तो उसी तरह सांस चले जाता का मतलब क्या है कि जीवन का शक्ति जो मनुष्य के पास रहा वो शक्ति परमेश्वर दिया, और परमेश्वर जब निकल जाता है, वो निकालता है वो शक्ति किसके पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ही दिया, परमेश्वर ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो शक्ति के पास नाम होगा कि ये इसका, ये उनका, ये इनका, ऐसा नाम नहीं है सांस के लिए। इसका एग्जाम्पल दूंगा आपको, इसका एग्जाम्पल दूं आपको, ये बात को आप समझ लेंगे ये बात क्या है। पहला ये बात को हम समझ लेंगे थोड़े वचनों के जरिए से। अयुब 27:3, ये जो सांस है ये है स्पिरिट। जोब 27:3,
जिन्ना चिर मेरा सांस मेरे विच है अते परमेश्वर दा मेरी अनासा विच है।
हिंदी में,
क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है।
परमेश्वर के आत्मा मेरे नथनों के अंदर है। परमेश्वर की आत्मा वो सांस है, परमेश्वर की आत्मा है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे,
ऑल द वाइल माय ब्रेथ इज इन मी एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन माय नोज़।
देखा, ब्रेथ इज स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड इज ब्रेथ। तो जो परमेश्वर हमारे को जान देता है वो है सांस, वो है परमेश्वर की आत्मा। अभी ये आत्मा जो परमेश्वर हमको देता है, ये आत्मा ये एक शक्ति है, इसमें नाम नहीं होता है। मेरा आत्मा के पास मेरा नाम नहीं रहता, आपके आत्मा के पास आपका नहीं रहता। हमारा पास अगर जानी जानी एक कुत्ता रखता है, उसके आत्मा भी है, उसके उसके सांस भी, उसके नाम नहीं रहता है। एक मछली के सांस भी है ना, मछली के ना के, के, के पास वो सांस का नाम नहीं होता है। सारा सांस जो है ये बहुत ही आम बात है। वचन में पढ़ लीजिए, सबोपदेशक 3:18
मैं अपने मन में आख्या कि हे आदम वंशिया दे कारण है पई परमेश्वर उन्हां नु जानसी अते ओ वेखन पई असी आप पशु ही हां, क्योंकि जो कुछ आदम वंश उत्ते बीतदा है सो पशु उत्ते भी बीतदा है, दोहां उत्ते इको जेही बीतदी है। जेकर मरदा है उस पर ओ मरदा है, हां सपना विच इको जेहा सा है अते पशु नालो मनुख कुछ नहीं है, हां सब व्यर्थ है।
ये बहुत बड़ा सच है, अब हिंदी में सुन लेंगे। देखो, मनुष्य को समझना है इस बात में, मनुष्य पशु के समान है। कौन सी बात में, पढ़ो। जैसी मनुष्य को वैसे ही पशुओं की किस बात में, पढ़ लो।
दशा होती है दोनों की, वही दशा होती, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है।
जैसे मनुष्य मरता है वैसे ही पशु भी मरता है, पढ़ो। सबों की सांस एक ही है, मतलब मनुष्य का सांस, पशु का सांस, जानवर का सांस, मछली का सांस, सभी एक ही है। और आगे,
और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, कुछ व्यर्थ ही है।
देखो तो इस बात से हम इस बात को हम कैसे समझें, आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर हम 10 टेलीविजन सेट लेते हैं, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग कलर का, और इधर लाइन में रखते हैं 10 टेलीविजन सेट, और एक एक टेलीविजन सेट को अलग अलग चैनल को ट्यून करके रखते हैं, लेकिन जब तक करंट नहीं आए कोई एक भी टेलीविजन सेट काम नहीं कर सकता है। चलो हम करंट छोड़ देंगे, करंट छोड़ते हैं, करंट एक भी एक दो तीन चार पूरा 10 सेट के अंदर घुसता है, और घुसते ही एक एक सेट बजाते हैं अपने अपने चैनल के मुताबिक। देखने में अलग अलग है, अलग 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 डिजाइन है, कलर्स है। अभी थोड़े समय के लिए 10 टेलीविजन सेट प्रोग्राम बता रहा है, बजा रहा है, अभी तुरंत करंट ऑफ कर, अभी करंट छोड़ा अंदर, अभी करंट निकाल रहा बाहर। बाहर करंट निकालते वक्त क्या आप अलग अलग कर सकता करंट, ये टेलीविजन 1 में गया करंट, टेलीविजन 2 में गया करंट, ये टेलीविजन 3 में गया करंट? नहीं जी, सारे के सारे सेट में जो करंट गया ये आम करंट है। जी,
जैसे पशुओं की कहते एक जैसा है
जी,
आदमी को मिट्टी से खुद बनाकर उसमें सांस फूका
जी,
पशु में किसी के सांस नहीं फूका परमिशन।
लेकिन 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 लेकिन
साइंस में से
जी,
जैसे आपने बताया कि जब आदमी और पशु को और मरने से पहले उनका वेट किया
जी,
पशु का उतने ही रहा और आदमी का कम हुआ,
ऐसा बोला?
हाँ।
जैसे जो था वो था गर्सेनी था ना, गर्सेनी जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था,
जी 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 जी,
मैं वही जैसे उसके अंदर एक आत्मा तो आप जैसे कह रहे हैं परमेश्वर ने, उसके अलावा जैसे ने पूछा कि तुम कौन हो, वो कहते हम बहुत हैं,
जी 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 जी, वो दुष्ट आत्मा है,
आत्मा
दुष्ट आत्मा अलग, आत्मा अलग। दुष्ट आत्मा का मतलब क्या है, ये देखो जब परमेश्वर इतने सारे सृष्टि बनाया धरती पर और स्वर्ग पर, स्वर्ग के सारे जो सृष्टियां मतलब स्वर्ग दूतों हैं उनको रहने का स्थिति है आत्मा, मतलब स्पिरिट बीइंग्स, और हम हैं देहधारी फ्लैश बीइंग्स। तो ये जो स्वर्ग दूतों हैं उसमें से शैतान नाम का एक स्वर्गदूत के साथ ढेर सारे स्वर्गदूत गिरा, गिर के परमेश्वर यहाँ इस जगह में छोड़ दिया है। ये तो 4-5 क्लास में ये बात आप समझ लेंगे, शायद ब्रदर उस वक्त और भी गहरा आपको बताएंगे ये बात। ये स्वर्गदूत तो घुस जाता है मनुष्य के अंदर और उनके उनके मन को उनके दिमाग को कब्जा करता है। तो ये बात अलग है जो आप बोल रहे हैं,
वो भी आत्मा
है। नहीं, ये अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट बीइंग्स, बिटवीन होली स्पिरिट एंड बिटवीन स्पिरिट दैट इज दैट गॉड ब्रीथ्ड इनटू द नॉस्ट्रल्स, मतलब जो परमेश्वर एक इंसान के नाकों के अंदर फूका ना, वो आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, और परमेश्वर खुद ही एक आत्मा है। प्रभु ने बताया यूहन्ना 4:24, ये सब कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब अलग अलग मतलब है। ये हम देख लेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये जैसे मैंने बोला ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, पार्ट 1, अगले क्लास पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, उसके बाद आप समझ जाएंगे ये मतलब क्या है। तो आज बहुत सारे सवाल है, ऐसे ही रख लो, हम देख लेंगे वो सारे सवालों का जवाब। हम जैसे ब्रदर से ब्रदर बोला कि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया और पशुओं को नहीं बनाया, लेकिन ऐसा सांस फूका, लेकिन अगर आप उत्पत्ति में दूसरा अध्याय में आप देखा जाए, परमेश्वर ही एक एक जानवर रचाया और लाया आदम के पास नाम देने के लिए, और आदम नाम दिया। तो जैसे जैसे मनुष्य को बनाया परमेश्वर, उनको भी ऐसे ही बनाया, लेकिन लेकिन काफियत नहीं दिया, खासियत नहीं, खासियत नहीं दिया कि ऐसे ही हमने बनाया, बस ऐसे बोला।
एक क्वेश्चन है, जैसे हम बाइबल हमारी बताती है सिर्फ जो न्याय होगा वो मनुष्य का होगा,
बिल्कुल
बिल्कुल, पशु आदमी को मार दो मार दे
बिल्कुल,
ये बुनियादी न्याय भी नहीं है,
बिल्कुल
भी नहीं करता तो ऊपर भी नहीं करता।
लेकिन हम न्याय, लेकिन हम न्याय में क्यों जाता है, हम ये नहीं कहता है, हम ये देखो अभी अभी जो होता है, नहीं अभी जो हम देखा है ये सबोपदेशक मनुष्य को परमेश्वर बताता है कि पशु के जैसा है, कौन सी बात में, नहीं न्याय की बात में नहीं, बुद्धि के बात में नहीं, समझदारी के बात में नहीं, सिर्फ मरने में। तो हम ये मिक्सिंग नहीं करना है, ये सिर्फ ये
तो
सिर्फ
बिल्कुल पशु भी खत्म हम भी
बिल्कुल,
और एक जो आत्मा है, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, पशु में और इंसान में फर्क है। समझदारी पशु के पास इतनी नहीं है जितनी इंसान,
बिल्कुल बिल्कुल वो तो हम मानते हैं, वो तो हम मानते हैं, लेकिन आज हम तो वो बात बिल्कुल उसके विरुद्ध हम नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि ये पहला ये आत्मा का डेफिनेशन क्या है, बताया कि एक शरीर चाहिए और सांस चाहिए, जब ये दोनों मिल जाता है बन जाता है जीवित आत्मा, और जब ये आत्मा का मौत आ जाता है पाप के कारण से, क्या होता है कि सांस निकल जा रहा है परमेश्वर के पास चले जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही दिया है वो सांस, और वो शरीर में ना जान है अभी, वो वापस मिट्टी में चले जाता है, बस ये हम देख रहे हैं। अभी ये सांस की बात भी हमने उदाहरण दिया ये टेलीविजन सेट इसलिए कि आपको बताएं कि हर एक मनुष्य के अंदर सांस, या मनुष्य और पशु के अंदर सांस, या मनुष्य और मछली के अंदर सांस, या मनुष्य और जानवर के अंदर सांस, फर्क नहीं है, फर्क नहीं, बस यही बता रहा हूं। लेकिन ये नहीं कहता कि मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला। बिल्कुल ये अलग बात, वो तो अलग है, मैं तो सिर्फ ये तो सांस की, हाँ सिर्फ सांस की बात कह रहा है, और सांस की बात कहते वक्त एक बराबरी है,
एक सांस और ब्रेथ,
यस
ये एक है,
सांस ब्रेथ और स्पिरिट एक है।
ब्रेथ को हम कहते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड,
नहीं नहीं ये लाइफ ब्रेथ है, ये ब्रेथ है जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, ये आपका व्रत नहीं
है,
नहीं ये आपका व्रत नहीं है, ये परमेश्वर का व्रत है, परमेश्वर का व्रत अलग और हमारा व्रत अलग।
जब आदमी मरता है
जी,
लंग्स है
जी,
सब कुछ है
जी,
ब्रेन भी है जो कंट्रोल कर
रहे हैं जी जी जी,
कोई तो चीज है जो ब्रेन को कंट्रोल कर,
एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो परमेश्वर
तो है ना, वो तो अगर हम सांस लेंगे छोड़ेंगे
नहीं 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 दैट इज नॉट द ब्रेथ अकॉर्डिंग टू साइंस दैट मे बी बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल ये ब्रेथ क्या चीज है, ये ब्रेथ वो है कि परमेश्वर दिया एक शक्ति, और उस शक्ति से वो नारी करने के लिए हम फू 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 बाहर छोड़ते अंदर लेते, बाहर छोड़ते अंदर लेते, बाहर छोड़ते अंदर लेते, इससे हम जिंदा रहते हैं, लेकिन एक समय आता है बाहर छोड़ते हैं और अंदर ले नहीं सकता है, इसको कहता है ब्रीद हिज लास्ट। ये एक अंदरूनी शक्ति है, ये एक ऐसा शक्ति जो हम समझ नहीं सकता है, परमेश्वर दिया है, ये तो सिर्फ हवा नहीं है, ये एक परमेश्वर का शक्ति है जो हवा में परमेश्वर रखा है, जिससे हमको जान मिलता है और उचित समय में निकल जाता है, समझा। तो अभी सांस की बात हम थोड़ा थोड़ा तो समझ लिया है ये बात क्या है, अभी हम ये बात भी समझना है कि ये शरीर परमेश्वर कैसा बनाया, ये शरीर ये इसके बारे में वचन क्या कहता है, क्योंकि ये शरीर कुछ ऐसा बात नहीं है जो परमेश्वर मिट्टी से कोई गुड़िया बनाया और फूंका और मनुष्य जीवन पर आया, ये सब बच्चों के लिए कहानी है, लेकिन वचन क्या कहता है, क्या वचन में परमेश्वर बताता है साफ साफ कि मनुष्य कैसा बनाया, वचन में पढ़ लेंगे अभी, भजन संहिता 139:14 बहुत ही भयानक रूप से पढ़िए पढ़िए। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर कितने सारे चीजें हैं, हड्डियां हैं, नसें हैं, खून चलते हैं नसें, नर्व है जिसे महसूस होता है ठंडा और गर्मी, और बहुत किस्म किस्म के अंग है, किडनी, लिवर, और हमारे हजम करने का जो 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 सिस्टम है, और लंग्स है, और दिमाग है, और दिल है, और मांसपेशियां हैं, कितने कितने चीजें हैं, सब मिलके हम जीते हैं, बन जाता है एक शरीर। सचमुच इसको कहना है हम भयानक रूप से परमेश्वर हमको उत्पन्न किया। अभी इसको परमेश्वर जो मनुष्य पहला उत्पन्न किया, कैसा किया मनुष्य, वचन बताता है। आप में से कोई इंजीनियर है इधर जो बिल्डिंग बनाते हैं? कोई भी नहीं ना। जो बिल्डिंग बनाते हैं आप तो देखा होगा, बिल्डिंग जब बनाते हैं ना, पहला बिल्डिंग में क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं और कम्बे बनाते हैं, है कि नहीं? नींव डालते हैं, उसके बाद कमाते हैं, उसके बाद उसको भर के बन जाता है एक इमारत, एक घर। लेकिन पहला बनना है नींव और खंबे। हमारा भी नींव और खंबा है, हमारा हड्डियां हमारा स्केलेटन जो है ना, अब देखता है ना बायोलॉजी क्लास में करता है उधर शीशे के अंदर वो है हमारा पूरा का पूरा हड्डियां। ये हड्डियां ना हमारा नींव और कंबा है। ये पहला परमेश्वर किया। हमारा हड्डी कैसा है? बड़ा बड़ा टुकड़े है, लेकिन कैसा है मालूम? डिजाइन है ऐसा 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 ऐसा। तो इसमें एक डिजाइन है, इसमें एक मोल्ड में डालना है। वचन में कहता है कि परमेश्वर ये कैल्शियम जो है लिया, कैल्शियम है ना, ये सब कैल्शियम से बनाया, लिया और मोल्ड में उंडेल किया, और जैसा जैसा ये हम डालता है कर्ड को, क्या कहता है, दही डालता है ना, और गट हो जाता है ना, उसके से गट हो गया, और अलग 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 हमारा हड्डी तैयार किया परमेश्वर इस तरीके से। वचन में पढ़ो अय्यूब की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन, यहाँ तोड़ा वहां तोड़ा।
जो बड़े बड़े काम जेड़े पला मैं से ते मैनू दूध वांगू नहीं डोल लिया अजे दही वांगू नहीं जमाया।
वाह ये तो सच्चा परमेश्वर है। ये तो कोई खिलौना का परमेश्वर नहीं है, ये तो कोई मजाक और बेवकूफी का परमेश्वर नहीं है। बराबर बता रहा है कि एक मनुष्य कैसा परमेश्वर बनाया। बराबर कौन सा किताब बनाता है इस तरीके से, पूछ लो। कौन से एक धर्म का किताब ऐसा बताता है कि इस तरीके से मनुष्य बनाया? पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लीजिए।
क्या तूने मुझे दूध के समान और दही के समान नहीं बनाया?
देखो क्योंकि पहला हड्डी बनाना है, दूध का समान और दही का समान डालना, उसके बाद गट हो जाता है, क्योंकि शेप है। ये कोई ऐसा कोई ट्यूब नहीं है, ये शेप है, ऐसा आ जाता है एक एक हड्डी। पढ़ो।
Has then half that not poured me out as milk and come me like cheese?
जी ये पहला स्टेप है, पहला कदम। उसके बाद क्या ना उसके ऊपर, अगर देखो अगर हड्डी बनाते हैं, हड्डी हिलना है ना, अगर हड्डी हिलना है हड्डी को क्या क्या चाहिए? मांसपेशियां चाहिए। अगर मांसपेशियां नहीं है तो हड्डी हिल नहीं सकता। इसके बारे में अगले वचन पढ़ो।
तू खाल से मांस मेनू पहनाया अति हड्डियां से नसा नाल मेनू जोड़िया।
देखो हिंदी में पढ़ लीजिए।
फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियों और नसें कूद कर मुझे बनाया।
देखो बहुत अद्भुत रूप से बनाया। पढ़िए
Thou hast clothed me
with the skin and flesh and has fenced me with bones and sinews.
देखो fenced me अंग्रेजी में बहुत बढ़िया है fenced me मतलब ये सारा का surrounded वो muscles and sinews और joints क्योंकि नहीं तो हम हिलता तो जैसे आपको जानता है पहला मांसपेशियों को जान देना है ना मांसपेशियों को जान देने के लिए नाते जाता है खून चले जाता है एक एक मांसपेशियों को जान देने के लिए क्योंकि खून भी कैसे जाता है आपको जानता है एक तो आर्टरीज है एक तो वेन्स है आर्टरीज लेके आता है ऑक्सीजन खून जो आर्टरीज आता है ऑक्सीजन लॉरी जैसे है ना ट्रक सर्विस ऐसा लेके आता है ऑक्सीजन सारे के सारे बॉडी का हाल हर एक हिस्सा को ऑक्सीजन देता है और खाली होके वापस चले जाते हैं खून भरने के लिए दोबारा ऑक्सीजन ऐसे चल के जा रहा है इसलिए हम जिंदा है इसलिए हम काम कर सकता है ये है ये वचन सारांशिक रूप में बता रहा है ये बात
पत्नी लहू में प्राण है
लेवी व्यवस्था में 17 और 11 लहू में प्राण नहीं है हर एक प्राण के जान है लहू पढ़ लो 17:11 लेवी व्यवस्था 17:11
शरीर भी जिंद उसके लहू है
हाँ शरीर का जान उसके लहू में है पढ़ लो आप पढ़ लीजिए शरीर का जान प्राण नहीं शरीर का जान लहू में है क्योंकि लहू में है वो कंटेनर जो ऑक्सीजन जो है ना लेके जाता है ना वो एक कंटेनर है कंटेनर का नाम क्या है जानता है हेमोग्लोबिन ना बिल्कुल हेमोग्लोबिन में वो कंटेनर है जो ऑक्सीजन पकड़ता है और लहू में लेके जाता है इधर उधर उधर दे के खाली हो जाता है वापस जाता है भरने के लिए ये है जान का सिस्टम जो परमेश्वर किया है लहू में रखा है वो जान और ये लहू से हर एक कोने में पहुंच जाता है जान पूरा का पूरा देखो ये छोटे से जो ये जो नेल्स है ना इधर भी जान आना है नहीं आया तो काला काला हो जाएगा तो ये अद्भुत भयानक रूप से परमेश्वर हमारा शरीर उत्पन्न किया है हमारा शरीर की बात थोड़ा अगर ये बायोलॉजी क्लास है बहुत बातें हैं बहुत सारे बात कितने कितने हड्डी है मनुष्य के अंदर 206 सिस्टर तो टीचर होगा तो 206 का जो हड्डी अगर मनुष्य का है बच्चे जब रहते हैं ना 206 से भी ज्यादा है क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना परमेश्वर हमारा रचाने का स्थिति कैसे बनाता है ना गिरे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो इसलिए पूरा का पूरा स्ट्रांग नहीं हो जाता है रबर की जैसा होता है छोटे बच्चे रहते समय में जाते जाते वो गट हो जाता है तो उस तरीके से हम देखते हैं हड्डी 206 सबसे बड़ा हड्डी है ये जांग का हड्डी है सबसे छोटा है ये कान के अंदर ये कॉक्सिक्स करके छोटा ईयर ड्रम का ये जो हड्डी है और दूसरे क्या हम देखता है कि हमारा बहुत सारे डिटेल्स है हमारा चमड़ी का अगर हिसाब देखे जाए तो 20 स्क्वायर फीट है 20 स्क्वायर फीट का चमड़ी लेके कट करके ये पूरा फिटिंग हो गया है 20 स्क्वायर फीट और उसके बाद हम देखता है हमारा जो वेन्स है ये वेन्स और ये आर्टरीज अगर पूरा का पूरा लाइन में लेके जाए हो जाता है 60,000 miles 60,000 माइल हमारा अंदर के जो आर्टरीज वेन्स और आर्टरीज ये सब अगर सीधे लॉन्ग करे तो 60,000 माइल है क्या आश्चर्य की बात है और उसके बाद देखता है कि हमारा ये जो बाल की बात है बाल का 50 लाख बाल है पूरा का पूरा शरीर में मैं ना सिर्फ बाल ना ना मैं सिर्फ सर के बाल नहीं कहा पूरा का पूरा शरीर में एक 50 लाख बाल है एक एक बाल का जीने का समय 3 साल एक 650 मास पे है बाइबल में सॉरी बॉडी में 650 मसल्स एक 100 जॉइंट है ये जॉइंट्स जो है ना ये 100 जॉइंट्स है उसके बाद 30,000 मिलियन मतलब 3,000 करोड़ नर्व सेल्स है वो नर्व सेल्स नहीं रहा तो हम फील नहीं कर सकता। कोई हमको चिया तो हम जानता कोई हमके चिया, कैसे जानते कोई चोया हमको, क्योंकि हमारा है ये नर्व सेल्स है, वो छोटा छोटा हम आंख को भी नहीं दिखता है। तीन हजार करोड़ इसको क्या कहते हैं, नक्स भी नहीं, ये क्या कहता है उसको, नर्व रोम तीन हजार करोड़ रोम का सेल्स है, और हमारा जीव में 9000 रुचि के बड है, इसलिए हम किस्म किस्म की रुचि पूछते हैं। अभी बैल और गाय से पूछो क्या रोज एक ही घास दे रहा है, अरे मसाला लगाओ यार, थोड़ा नमक लगाओ यार, क्या बिल्कुल बकवास है, लेके जाओ, ऐसा कोई कहता है? और बैल और कुत्ता नहीं, लेकिन हम अगर एक जैसा खाना देते हर दिन क्या करेंगे, आवाज करेंगे, क्या समझ के रखा हम? तो ये किस कारण के लिए है? क्योंकि हमारा जीव में परमेश्वर दिया है 9000 टेस्ट बड्स। इसके लिए आजकल एक साइंस है, कुकरी एक साइंस है, चैनल भी आ गया है फूड, क्योंकि इतना बड़ी बात है, ये परमेश्वर का आशीर्वाद। देखो खाना से हमारा जान आता है, लेकिन खाना में लज्जतदार और रुचि, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है जो परमेश्वर दिया गया हमारे लिए। तो ये सारा बातें हम सिर्फ बाहरी बात है, अंदरूनी बात गए तो हमारे अंदर है एक कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें है स्टमक और इंटेस्टाइन्स और लिवर और किडनी, और उसके बाद ये एक हार्ट है जिसको पूरा का पूरा बॉडी को सप्लाई करता है खून, और सब ऊपर हेडक्वार्टर्स इधर है ये ब्रेन, ये ब्रेन से चलता है सारे के सारे बॉडी पूरा का पूरा। ये ब्रेन ऐसा है, एक आपको अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज देखा जाए, जलंधर का टेलीफोन एक्सचेंज, एक एक सेकंड को कॉल चल रहा है, साउंड चल रहा है उधर एक्सचेंज में, क्योंकि एक इतने सारे कॉल चल रहा है पूरा का पूरा जलंधर में। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा है, उससे भी तेज, पूरा का पूरा बॉडी का जो भी, अगर कुछ भी अगर हम हिलना है, कुछ हाथ लेना है, कुछ देखना है, कुछ हाथ फैलाना है, कुछ खाना है, कुछ हजम करना है, कुछ सांस लेना, कुछ किधर से ऑर्डर आना है, तो सारे के सारे मैसेज उधर जाते हैं। क्या भयानक बात है, क्या भयानक बात है। और इस ब्रेन का जो मैसेज को रिटर्न करता है ना रिएक्शन, वो स्पीड क्या है, रोशनी से भी बढ़कर, रोशनी सबसे तेज जो हमने सुना है ना, इससे ज्यादा है सोच, स्पीड ऑफ थॉट। अगर हमारे अंदर स्पीड ऑफ लाइट चलता है ना, हम अगर अभी हम क्लास ले रहे हैं, आयो वो ये ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उतना ही तेज है, जल्दी जल्दी करना तो और भी रोशनी से भी तेज, ये है सोच के तेज, इतने जल्दी से देखो मेरा हाथ, मेरा देखना, मेरा करना, सब कुछ। सचमुच हम अद्भुत से और भयानक रूप से परमेश्वर हरा छाया। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है जो भजन संहिता वाला लिखा है, ये बात तो हम देख रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, अभी इतना सारा सच्चाई आत्मा के बारे में सुनने के बाद हमारे को ये सवाल ये उठता है, ये सारा दुनिया और आप भी यहाँ आज तक क्यों विश्व कर रहा है कि आत्मा मरते हैं, क्यों? क्योंकि ये झूठ पहला पहलने को हुआ, उत्पत्ति 3:14 उत्पत्ति 3:4 वहाँ परमेश्वर ने एदन के वाटिका में आदम को और अव्वा को कहा कि देखो मैं हर किस्म के पेड़ और इस बगीचा में आपके खाने की छोड़ दिया है, आपके जैसे जैसे मन आता है आप लेके खा सकता है, लेकिन ये देखिए ये पेड़ का नाम है अच्छाई और बुराई का ज्ञान हासिल करने का पेड़। वचन में पढ़ो उत्पत्ति 2:16
यहोवा परमेश्वर ने आदमी नु आज्ञा दित्ती कि बाग दे हर वृक्ष तो तू निसन खाई पर भले बुरे दी सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई क्यों जो जिस दिन तू इसको खाएगा जरूर मरेगा।
हिंदी में
ओ यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी तू माटिका के वृक्षों का फल बिना खट्टे खा सकता है पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
तो जब परमेश्वर ने आदम को कहा ये बात हुक्म दिया कहा कि जिस दिन तुम आत्मा इस पेड़ से खाते हैं उस दिन तुम आत्मा समझो कि तुम मर जाओगे। यही है सच्चाई। लेकिन इस शैतान उस सांप के जरिए से झूठ बोला कि तुम आत्मा तुम नहीं मरोगे और जब सचमुच मरा ना उसके बाद शैतान ने उनके झूठ को जीवित रखने क्या बोलने लगा मौत में क्या होता है शरीर ही मरता है क्योंकि वो एक झूठा ना उधर आतंक के वाटिका में तुम नहीं मरोगे तो स्थापित करो कि नहीं मरोगे क्योंकि मर रहा है नहीं 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 मर रहा है वो शरीर मरता है लेकिन आदमी नहीं मरा। अरे आदमी ही मरा नहीं नहीं तुम नहीं समझ रहे आदमी जो है अंदर के है अंदरूनी एक शक्ति है जिसको कहता है आत्मा वो ही मर सकता है लेकिन शरीर मर सकता है। ऐसा ऐसा कहानी बोल के कहानी के ऊपर कहानी बोल के गाना गीत पिक्चरों प्यार के कहानी वगैरह वगैरह आके लोगों के अंदर क्या छाप आ गया है कि हमारे अंदर एक आत्मा है इसलिए लोग थोड़ा बोलता है कि ये आत्मा संगीत है ये आत्मा गाना है ये आत्मा से तुमको प्यार करते हैं। आत्मा से तुमको प्यार करते का मतलब क्या है मैं तुमको प्यार करते बस यही मतलब है। तो ये बदले लाके लोगों के अंदर उलझन फैल के अभी क्या सोच रहे लोग कि मौत में मौत ही नहीं है मौत में मौत ही नहीं है तो मौत जब होता है वो एक ट्रांसफर है जैसे जैसे जलंधर से गवर्नमेंट ट्रांसफर करते चंडीगढ़ तो उससे ट्रांसफर हो जाता है आत्मा का इधर से उधर बस कोई बात नहीं है कोई बात बस कोई कोई बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छा ट्रांसफर चाहिए तो अच्छा पैसा देना है मतलब अच्छा जीवन जीना है तभी तो तेरा ट्रांसफर स्वर्ग को जाएगा नहीं तो बुरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इधर से शुरू हुआ इधर से शुरू जी
कई लोग कहते हैं कि इंसान मर के जानवर के रूप में चले
हाँ मतलब ये बुद्ध 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 बुद्धिस्ट लोग
लेकिन
ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि मनुष्य जब मर जाता है जब तक पुनर्तान आता है वो बिल्कुल मिट जाता है और आप जो है आप कोई दूसरा नहीं बदल सकता है आप तो आप है मैं तो मैं हूँ। परमेश्वर जब हमारे को बनाया हमारे को ओरिजिनलिटी दिया है डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। यस लेस वो तो धीरे धीरे आने वाला क्लास में है आने वाले क्लास में नहीं नहीं अच्छी बात है अच्छी बात है सवाल अच्छे है लेकिन
बिना बॉडी के
जी
जैसे हम कह रहे थे कि सोल नहीं बनता
हाँ
तो जो सब बॉडी के साथ ही हमारी एक पहचान है जैसे
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
वो मेरी बॉडी के साथ है जैसे मोसेस था जो मूसा था वो जब मर गया
जी
तो बाइबल कहता है परमेश्वर कहता है दफन किया
जी
उसका बॉडी चला गया पर जब रूपांतर हुआ यीशु का
जी
तो जो चेले थे उन्होंने मूसा एलिय्याह को बात करते देखा
जी अच्छी बात है अच्छी बात सब बाइबल पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा सब लोग सो गया है अभी आप सभी जागे हैं बहुत अच्छी बात है। चलो ये सारे बात तो हम देख लेंगे मैंने बोला ना ये सोल पार्ट वन है ब्रदर अजय जी पार्ट टू लेंगे
तेरा सवाल उधर ही आएगा। उसके बाद पार्ट थ्री है, उसके बाद नरक भी है। आप सब लोग नरक जाने वाला है, जानते हैं? नरक जाके देख के वापस आएंगे कि नरक क्या चीज है, नरक में क्या क्या है। जैसे कल के सारा चैनलों में पास्टरों क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा नरक जाते हैं, बोलते नरक में ये है, वो है, ये दृश्य, वो ये, इन सारे लोग उधर है, चलो हम भी जाएंगे ना नरक, जाके देख लेंगे।
मैंने प्रीचिंग में सुना है पास्टर दीजा करंट है, वो बोला जाके परमेश्वर से बात करके वापस
आ,
जबकि वचन बोलता है कि परमेश्वर के आगे कोई भी नहीं जा सकता।
देखो
तो बोल रहा है वचन में कि मैं एक आग हूँ, मेरे आगे कोई आएगा भजन हो जाएगा। यमुना था रेवोल्यूशन की बुक है, यमुना भी अगर उसने जो लिखा है कि नरक का जो सीन स्वर्ग में क्या देखा, तो बाइबल ने लिखा वो भी गया, उसने देखा सब कुछ। तो डीजे तो उनका जैसे बात किया, तो वो क्यों नहीं देख, अगर ये हमला देख सकता है तो वो क्यों नहीं देख?
वो भी हम देख लेंगे, धीरे धीरे देख लेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, आज हम जो बात कर रहे हैं इसको छोड़ के कोई दूसरे गया तो ना ये समझेंगे ना वो समझेंगे, और शैतान का चाल यही है। तो ये सब साथ साथ में रखेंगे और धीरे धीरे हम देख लेंगे, एक एक लिख के रखो, क्योंकि सारे के सारे सवाल का जवाब हम देख लेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे वो झूठ जो पहला अंदर आया, ये शैतान लाया ये झूठ। परमेश्वर कहा जिस दिन तुमने उस पेड़ से वो वृक्षा से तुम काटते हैं तुम मरेंगे, अवश्य मरेंगे बोला, लेकिन शैतान बोला तो अवश्य नहीं मरेंगे। तो उधर से पहला झूठ आया दुनिया में, परमेश्वर के विरुद्ध पहला सृष्टि अलग कहने लगा। और उसके बाद हम क्या देखता है कि शैतान पूरा कोशिश किया कि उनके झूठ सच्चाई बने और सच्चाई झूठ बने, समझा? परमेश्वर का शैतान का कोशिश क्या था कि उनके झूठ सच्चाई मान ले और सच्चाई झूठ मान ले। ये है शैतान का चाल। वचन में पढ़ते हैं यशावा 5:20
बेटा
पढ़ लो। देखो बुरा को भला और बला को बुरा और अंधियारा तो असत्य, अंधियारा तो उजाला,
उजाला को
देखो और कड़वे तो पाप है, कड़वे को मीठा। पाप तो अच्छा है, पाप तो अच्छा है और अच्छा, अरे ये तो कड़वा है। देखो ये बात आजकल सारा दुनिया में फैल गया है। आजकल 99.99% लोग ये ही मान रहे हैं, तो झूठ है वो सच्चाई मान रहा है, और जो सच्चाई है वो झूठ सोचते हैं। तो ये है स्थिति, ये है स्थिति प्यारे भाई बहनों, ये शैतान का काम है। शैतान ने ये काम किया है, शैतान ने मनुष्य को शिक्षा दिया है कि आत्मा जिंदा रहता है, मौत में तो मौत नहीं रहता है। वचन में पढ़ेंगे कि मनुष्य क्यों ये शैतान का झूठ को मानते हैं, क्यों मानते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 3:11। ये तो आपका NIV बाइबल से पढ़ना है, सबोपदेशक Ecclesiastes 3:11। बहुत ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ लीजिए।
उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं।
हाँ, अपने अपने समय में सुंदर होता है, एकाएक नहीं, समय लगता है। और
फिर उसने मनुष्यों के मन में अनंति अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया।
मनुष्य के मन में, मनुष्य के ध्यान में
अनंत काल का ध्यान दिया है, इसलिए मनुष्य का एक आशा है, एक आशा है कि कल है, कल है, कोई कुछ है, क्या है नहीं जानता है, लेकिन एक कल है अंदर के अंदर जानता है। लेकिन वचन आगे पढ़ो,
तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आधी से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता।
मनुष्य अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अनंत काल का जो आशा अंदर परमेश्वर दिया है, उस अनंत काल के आशा का ज्ञान अभी शैतान क्या बोल रहा है, वो अनंत काल होगा स्वर्ग में, वो अनंत काल होगा नरक में, अनंत काल होगा इधर में, वो अनंत काल होगा उधर में, ये सारा का सारा झूठ का ज्ञान अभी फैल रहा है शैतान। लेकिन उचित समय में परमेश्वर मनुष्य के समझदारी के आंखों को खोल के बताएंगे ये सच्चाई क्या है। परमेश्वर के एक योजना है, जैसे आपने पढ़ लिया है अभी तक 11 क्लासेस में, परमेश्वर का एक योजना है, ये सारा मनुष्य जाति का रचाने का एक मकसद है, परमेश्वर का एक मकसद है। ऐसा नहीं रचाया, ऐसा नहीं इस दुनिया में अनुमति किया बुराई, एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मकसद है तो हमारा है। अभी प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम देखते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है, मौत का स्थिति क्या है, वचन क्या बताता है। वचन में पढ़ो सबोपदेशक 9 अध्याय 4 वचन।
जेड़ा सारे जीवनिया विच रलिया है ओ ओदे लई आस है कि जो मोए हुए शेर नाल जीवंदा कुत्ता जंगा।
हिंदी में,
परंतु जो सब जीवन में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए से के बढ़कर है।
इसका मतलब क्या है, जीवित हुआ कुत्ता मरे हुए शेर से भी बढ़कर है, क्या मतलब है? अभी इधर एक शेर रखते हैं, इधर एक कुत्ता रखते हैं, जब तक दोनों जिंदा है ना, कुत्ता कामते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि शेर है, बाजू में शेर है। लेकिन अगर ये शेर मरने दो, ये कुत्ता खुद शेर बन जाएगा, बोलेगा तुम क्या मेरे जगह में आके, मैं बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी 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 बातें करेंगे, क्योंकि जीते हुए कुत्ते मरे हुए शेर से भी बढ़कर है, क्योंकि अभी शेर कुछ नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता, शेर का नाम ही मिट गया है। तो शेर का जो स्थिति मिट जाता है माउथ में, तो माउथ में कुछ नहीं कर सकता है। वचन में, उसी वचन में 9 अध्याय 4 वचन जो हमने पढ़ा है, 5 और 6 पढ़ेगा।
मैं पास्टर, ये जो 9 और 4 आपने वचन दोबारा इसको
दोबारा,
इसका समय नहीं है यार,
इसका मतलब क्या है मालूम, इसका मतलब क्या है कि अभी वचन कहता है कि जीवित हुए कुत्ता मरे हुए शेर से भी बढ़कर है, जिसे कुत्ता मरे हुए शेर से भी बढ़कर है। अभी देखो, अगर मैंने कहा अगर दो जीवित हुए एक शेर एक कुत्ता इधर लाते हैं, दोनों जिंदा रहते वक्त ये कुत्ता का हाल बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही डरेगा। लेकिन अगर ये शेर मर जाता है तो किधर चले जाता है, डर गायब, डर गायब। अभी जब तक शेर जिंदा है कुछ कर सकता है, शेर डरा सकता है, लेकिन जब मर जाता है शेर, मरे हुए शेर का क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जिंदा कुत्ता वो खुद ही शेर बन जाता है, इसका मतलब है जान में कुछ कर सकता है, मौत में कुछ नहीं कर सकता, चाहे तुम कुछ भी कौन भी हो, तुम शेर भी हो, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, मौत में सब खत्म।
की परिभाषा ये शेर की परिभाषा इससे और भी आता कभी
पंजाबी में आप बोल रहे हैं, उधर
मैं की जो परिभाषा है इसे थोड़ी सी ये भी हो सकती है कि जो जानता है सब कुछ, जो जानता है सब कुछ, मगर वो फिर भी पाप करता है।
नहीं नहीं, ये चिंकी भाषा नहीं है जी, बताए।
बाइबल में जो है
जी बताए,
उसको तो हर तरीके से देखना पड़ेगा
जी।
तो अगर शेर है जो जानता है सब कुछ, ठीक है ना, तो शायद परमेश्वर ने इसलिए ये बोला कि शेर के स्थान पर कुत्ते को बोला उसने कि जो जिसको वो मानते हैं, जो परमेश्वर को मानता है उसके अधीन रहता है,
उसको कुत्ता के समान है।
नहीं वो उसको उसने दीप कुत्ते की है, मगर उसने कहा उससे वो अच्छा है शेर से, ये भी तो हो सकता है ना।
तो शायद बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी आप तो क्या करते हैं मेरे के थिंकिंग को अभी सिमुलेट करते दूसरे तरीके में। देख लेंगे ब्रदर, वो नोट कर लो उसके सवाल का। तो चलो हम अभी 5 और 6 वचन पढ़ लेंगे। या वही से सेक्ट नवा आ गया।
जिंदे का जान जानते हम तो जो अति मरांगे, पर मुए कुछ भी नहीं जानते, अति उना दी और कोई बदला नहीं, क्यों जो उना दा चेता जानदा रहंदा है।
हिंदी में
क्योंकि चेता तो इतना जानते है कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते।
ये सबसे बड़ा सबक है कि मरे हुए का कुछ नहीं जानता है, कुछ ज्ञान नहीं है। और आगे पढ़ो।
और ना कुछ और बदला ले सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है।
तो इसका मिट गया है, बिल्कुल बिल्कुल मिट गया है। लेकिन शैतान इस बात को मिटाने के लिए पिक्चरों बनाते हैं, और पिक्चरों में प्यार का लव स्टोरी दिखाता है। एक तो मर जाता है लेकिन उसके प्यार भूलता नहीं है, वो वापस आ जाता है, और ऐसा 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 कहानी बनाते हैं। और सब लोग क्या हम विश्वास करते हैं कि मौत के बाद भी ये याद और ये प्यार तो रह सकता है। लेकिन वचन कहता है प्यार रहा, मौत में मिट गया। याद रहा, मौत में मिट गया। स्मरण ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। यही तो वचन कहता है। अभी 10वां वचन पढ़ो।
जिला काम तेरे हाथ लगता है, वो हाथ पैर जोर नल कर, क्यों जो पताल भी जिससे तू जानता है कोई काम, ना ख्याल ना ज्ञान ना बुद्ध है।
हिंदी।
जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति पर करना, क्योंकि अंतलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना ज्ञान।
देखो जहाँ आप जाने वाले हैं अधोलोक मतलब माउथ में वहाँ कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है ना काम है ना बुद्ध है, कुछ भी नहीं। अभी अभी ये बहुत ही आश्चर्य की बात जो हम वचन में पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल ना रहा, नो एग्जिस्ट एट ऑल। अभी थोड़े वचनों में हम देख लेंगे। अभी भजन संहिता में 6 और 5वां वचन और 115 और 17 हिंदी में ही पढ़ो। छे की 5 और 115-17।
क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा समर नहीं होता, अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा।
देखो मृत्यु में परमेश्वर कभी याद नहीं कर सकता है। तो हमने गया उधर नरक गया, दर्शन देखा है, और ये बोल रहा वो बोल रहा, कुछ भी नहीं है। माउथ में ना कुछ भी स्मरण नहीं है, कुछ बात भी नहीं कर सकता है। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे हमारे रोमन कैथोलिक का दोस्तों जो मरियम को प्रार्थना करते हैं, जो मदर टेरेसा को प्रार्थना करते हैं, जो मरे हुए को प्रार्थना करते हैं, और उनसे इनसे विनती करते कि हमारे लिए परमेश्वर से बात करो। लेकिन वचन कहता है कि माउथ में परमेश्वर का स्मरण ही नहीं कर सकता, परमेश्वर के एक भी स्तुति कर नहीं सकता, क्योंकि जो हम मर जाता है ना खामोशी में चले जाता है, खामोशी। 117-15 पढ़ लो। 115-17 देखो चुपचाप हो जाता है। अरे परमेश्वर को स्तुति करने जुबान चाहिए, जुबान ही नहीं है, जुबान गया है मिट्टी में तो कैसे स्तुति कर सकता है। स्मरण करने के लिए दिमाग और मन चाहिए, मन गया है इधर मिट्टी में तो क्या कर सकता, कुछ नहीं। माउथ में सब मिट गया है, सभी मिट गया है। यही तो सब उपदेशक यही बता रहा है।
ब्रदर एक जॉन साहब प्रभु यीशु ने बताया था लाजर और धनी व्यक्ति का,
वो भी पात्री में आएगा। पात्री अच्छी बात है। नहीं
मेरे भाई भी
नहीं जी, ये पात्री में हम ना ही भागने वाला है ना ही आगे भागने वाला है।
अगर हम हमको भगा समझाएंगे तो वो आएगा और जरूर एक दो हफ्ते के बाद यही आपका सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आज तो हम सिर्फ ये वचन देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं बाइबल में। देखो ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, आपके बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क अगले क्लास और तीसरे क्लास में आप देख लेंगे। लेकिन एक ही क्लास में सारे के सारा जवाब सवाल लेके आए तो आपको उलझन हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बोल रहा है। तो धीरे धीरे आज कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, ये वचन कहता है कि जो मरते हैं खामोशी में उतरते हैं, परमेश्वर का स्तुति नहीं कर सकता है। तो एक और वचन है अय्यूब 7:9-10। मतलब जो मरता है ना, जो मर जाता है, जब तक पुनरुत्थान का दिन नहीं आता है वो वापस नहीं आ सकता है, वापस नहीं आ सकता है। लेकिन हमारा हिंदू के दोस्तों का मानना क्या है मालूम, जब चले जाता है, लेके जाता है शमशान को शरीर, क्या जब फेंक के चले जाता है ये चावल, क्या बोलता है उसको, चावल का टुकड़े फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी से, कभी पूछो क्यों फेंक रहा है, खुद ब खुद नहीं जानता है बहुत सारे। ये एक संस्कृति है, इन संस्कृति के अनुसार क्या मानते हैं ना, अगर ये चावल का दाने फेंकते जाए ज्यादा ज्यादा फेंके तो जब वो शमशान तक पहुंचते हैं ना तो इस रात को ये मरे हुए वापस आने की कोशिश करेंगे घर को। तो वो वापस आना है तो एक एक दाना को उठा के आना है। तो ज्यादा से ज्यादा दाना अगर हम फेंकते हैं तो उठा के सुबह आ जाए हो जाएगा तो घर को वापस नहीं आ सकता। तो ये है उनका विश्वास।
एक क्वेश्चन है
ये, जी
सुना कि जो आदमी का वक्त मरने का हो जाता है,
जो आदमी का
मर जाता है
हाँ,
तो कुछ देर बाद वो कई लोग हैं कि भगवान से ये जिंदा हो गया, हिलने लगता है, क्या वो सच होता है,
हिलने लगता
है वो ऊपर से उसको हुक्म हो जाता है कि तुम जाओ अपना वक्त नहीं आया।
वो एक कहानी है, वो एक कहानी है, वो भी पार्ट 3 में हम देख लेंगे वो बात। ये कहानी है, वो वापस आ गया जो दोबारा शरीर के अंदर, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये जो विश्वास हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि अपने मरे हुए रिश्तेदार आज कोशिश करेंगे घर को वापस आने के लिए, वो अभी एक आत्मा बन गया है, घर में नहीं आना है, इसलिए ज्यादा ज्यादा चावल का दाने अगर हम फेंक जाए वो उठा के आना है, सुबह हो जाएंगे। उससे पूछो कल क्या होगा, कल के बारे में नहीं सोचा।
एक और ट्रेडिशन है, सर में मेघ डालते हैं, उसको निकाल के दरवाजे पे लगा देते हैं।
देखो ये ऐसा ट्रेडिशन है जो ये लोग मानते हैं कि इस तरीके से ये मरे हुए आत्मा वापस आ सकता है। लेकिन वचन बोलता है बिल्कुल वापस नहीं आ सकता है, जो आत्मा मरता है ना वापस अपने घर को नहीं आ सकता है। वचन कहता है कैन नॉट रिटर्न बैक, ही शल रिटर्न नो मोर टू हिज हाउस। अगले वचन अय्यूब 14:21। ये बहुत इमोशनल बात है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अपने मरे हुए बुजुर्ग, मरे हुए माता पिता देख रहे हैं हमारे को, जैसे जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मारता है ऊपर पिता के लिए इसका दिखाता है बैट, सोच रहा है कि पिताजी देख रहा है। ये इमोशनल बात है, ये इमोशनल बात है। मेरे को भी ऐसा बात किया जब तक ये सच्चाई सुन लिया कि सोचता है कि हमारा माँ हमारा बाप जो मर गया है गुजर गया है हमारा देखभाल कर रहा है अभी भी, तो हम उनसे कुछ ताल्लुकात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन साफ साफ कहता है वो नहीं जानता है, अगर हमारे को अच्छा हो जाता तो भी नहीं जानता, बुरा हो जाता तो भी नहीं जानता है। वचन साफ साफ
मान लीजिए आज पूरे देश में मतलब कहीं भी चले जाओ बोलते ये आदमी मर गया,
इसकी आत्मा इसको आगे लगी चमड़ी मतलब के अंदर से दूसरा आत्मा मोड़ रही है, वो नाम बोल ले रही है।
वो भी हम देख लेंगे, वो भी हम देख लेंगे। एक्चुअली ये पार्ट टू, ये पार्ट टू में आता है, ये क्वेश्चन है गोस्ट।
बड़े दुख की बात है कि हम देखो प्रभु को मानते हैं, अभी भी हमारे दिमाग है ना संसारिक रीतियों में पूरी।
नहीं जी, ऐसे मत बोलो जी, हम सब जो है आम साधारण आदमी है। नहीं, हम सब आम साधारण आदमी है, हम सब अभी शिक्षक है, हम सीख रहे हैं, हमको कोई ना कोई स्थिति में रहे परवाह नहीं, ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की कृपा से अभी हम उस अंधेरा से अभी उनके उजाला को आ रहा है, और इसलिए हम सीख के आ रहा है। गदल जी का अनुभव अलग, हमारा अनुभव अलग, ब्रदर जी का अनुभव अलग, सिस्टर का अनुभव अलग, हम सब अलग अलग स्थिति में है, अलग अलग अनुभव में, हम हर एक उंगली एक जैसा नहीं है। तो ये बात तो देखते वक्त
टाइम लंबा हो रहा,
बोलो
हम कहते आ नहीं सकते जब सैमुअल की आत्मा को बुलाया,
ये अगले क्लास
जी, एक जैसे लाजर मर गया, चार दिन हो गए मरे, यीशु ने कहा लाजर बाहर
जी,
जिंदा बाहर आया
जी,
उसके बाद आगे चलिए ये आगे जो परमेश्वर के और दास थे उन्होंने भी जिंदा किया
जी जी,
आज भी मुर्दे बहुत बड़ी मीटिंग में जिंदा हो रहे हैं
जी जी,
तो वो सब क्या,
ये सब हम देख लेंगे। हम क्या अभी ये वचन है या मेरा कल्पना है, अभी जो मैंने आपको पढ़ा है ये वचन है या मेरा कल्पना है, ये वचन है। मैं क्या बोलता हूँ, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, पार्ट वन में आपको पहला वचन को सुनने दे आपको, जब आप वचन सुनते हैं और हजम करते हैं ना एक हफ्ते, अगले हफ्ते इतने सारे सवालों का जवाब दूसरे भाग में ब्रदर लेगा, उसके बाद भी एक सवाल रहेगा, तीसरे भाग में देखेंगे, तीसरे भाग में आपको ये बात बिल्कुल संपूर्ण संतुष्ट होने का स्थिति है। तो ये अच्छी का सवाल है, ये भी आपका सवाल भी है, आपका सवाल है गोस्ट, ये गोस्ट क्या चीज है। बहुत सारे देखो मेरा गांव है गोवा, तो गोवा में बहुत सारा ये विश्वास है, और क्या कभी कभी कहता है कि जो मरे हुए नानी जी या मरे हुए चाची रात में रोटी बनाते हैं, गरम गरम रोटी रहते हैं उधर पता नहीं, और मामा जी गीता बजाते थे रात में 3 बजे गीता का था चिंग 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 चिंग, तो ये सारा बात जो है ये क्या चीज है, ये क्या चीज, ये कैसा होता है। और ये अप्सरा भी आपने सुना होगा, ये सारे ऐसा ऐसे जो सुंदर सुंदर सा सफेद सफेद सा औरत दिखता है लेकिन उसके पैर जो है पीछे है, जो वो सारे बातें जय 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 जय। तो ये सब क्या चीज है, ये सब क्या चीज है, ये सब हम देखेंगे, ये सारे बातें को हम समझ लेंगे, परमेश्वर के वचन में ढूंढ लो ये सारे का।
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज देखी हुई है,
बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ। अरे ये लोग थोड़े लोग ये ब्रदर बोलता है देखा ना, मेरे को जानता है, एक ब्रदर भी है साउथ में, वो देखकर वो उसका भयानक रूप देख के उसको मूत तक आ गया है ब्रदर को, इतना घबरा है। तो साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात भयानक बात है, ये क्या चीज है। ये सारे बात तो हम धीरे धीरे देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे, लेकिन आज तो हम ये बात को इमोशनल बात देखा कि अगर कोई किसी का बेटा उसके मरे हुए माँ बाप के बाद उसके जिंदगी में कुछ तरक्की आ जाए, मरे हुए माँ बाप को नहीं जानता है, अगर वो जेल में जाके फंसता है कुछ बुरा करता है माँ बाप को नहीं जानता है, ये तो वचन कहता है, लेकिन आजकल हमारा संस्कृति में ऐसा नहीं है, हम क्या मानते हैं, हम क्या बोलते रहते हैं, शायद माँ देख रहे हैं, शायद बाप देख रहा है, कोई अवार्ड लिया तो बोलेंगे डैडी जी ये आपके लिए है, डैडी जी चल बस आपसे 6 महीने पहले काश डैडी जी होते हैं, ये के लिए है। तो ऐसे देखिए तो हमारे अंदर भी एक इमोशन आ जाता है, और हम भी विश्वास आ जाता है ऐसे चीजों में। लेकिन वचन बहुत साफ तरीके से कहता है नहीं नहीं, तरक्की आए तो भी नहीं जानता है, बुरे स्थिति में चले जाए तो भी नहीं जानता है। तो अगले बात क्या देखता है, ये गोश्त, ये सारे बातें, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये सब शैतानिक चीज है। आपको देखा है ना, हॉलीवुड में आपने देखा होगा कि हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और पिक्चर बनाने वाला ईटी था, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो एक रबर से बनाया एक 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 एक, एक आदमी जैसा, एक बंदा जैसा, और एक पिक्चर भी चलाया है। तो जो हॉलीवुड में इतना सारे बातें स्पेशल इफेक्ट्स कर सकता है, क्या शैतान स्पेशल इफेक्ट्स नहीं कर सकता? कर रहा है। क्या करता मालूम, सारे के सारे कैमरा लेता है जब हम जिंदा लेते हैं, जिंदा रहते हैं, और मरना आज वो थोड़ा थोड़ा झलक सफेद बना के दिखाता है। जैसे जैसे ब्रदर ब्रदर से पूछना, क्या देखा तुमने, कैसे देखा तुमने, कैसे रहा, कौन सा रंग था, ज्यादा से ज्यादा सफेद रहता है, और अगर अगर हाथ अंदर डालता है ना, ऐसे चल जाता है अंदर। क्यों? ये एक फोटोग्राफिक इमेज है। अगर एक फोटोग्राफिक इमेज इधर हम शूट लगाते हैं ना, बोलेगा, दिखेगा जैसे टीवी में है ना इमेज, लेकिन हाथ अंदर डाले तो चले जाते, क्योंकि एक फोटोग्राफिक इमेज, लेजर इमेज है। ये फोटोग्राफिक और लेजर इमेज जो मनुष्य से है, मनुष्य से भी बुद्धिमान कौन है? शैतान। तो ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के जरिए से ऐसा ऐसा गोश्त और ऐसा ऐसा बात, मेरा बाप ने बहुत सारे देखा, सफेद सफेद सुअर रात को 12 बजे के बाद चले जाते हैं, सुअर, सफेद सुअर का एक झुंड। तो ये सारे बातें हर एक शहर में, हर एक जगह में कहानी है, और हम ये नहीं बोलते कि ये सब झूठ, ये सही है, ये शैतानिक काम है। क्यों? वो एक ही झूठ मानना है, मरने के बाद जीवन है, मौत मौत नहीं है। लेकिन वचन बहुत साफ कहता है, मौत के बाद कुछ नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं, दी एंड। लेकिन शैतान का कोशिश क्या है, नहीं है जीवन, है कर्म, है काम, है प्यार, है कहने के लिए शैतान कोशिश करते रहते हैं। तो ये गोश्त और ये सारे बातें शैतान के काम है। लेकिन वचन में क्या कहता है, यूहन्ना 8:32, सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। लेकिन अगले हफ्ते दूसरे भाग में हम देखेंगे शाऊल जो जाता है वो जादूगरी के पास, और जाते हैं और शमूएल के आत्मा को बुलाते हैं, और हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया, मूसा और एलिया प्रकट हुआ और प्रभु के साथ बात करने लगा, कौन उनकी आत्मा वापस आ गया, ये तो हम देखेंगे। और तीसरा हम देखेंगे वो चोर जो प्रभु यीशु के बगल में मरा, और प्रभु यीशु से पूछा जब तुम जाएंगे तुम्हारे राज्य में मेरा याद करो, और बोलता आज मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो ये सारे बात तो हम देखना है, और सबसे ज्यादा ये लाजूर और अमीर की बात क्या है, ये सारे के सारे एक एक ये हम अगले दूसरे और तीसरे भाग में देखेंगे। लेकिन आज हम खत्म करेंगे वो सच्चाई जिससे हम शुरू किया, एहेजकेल में 18:4। हर एक आत्मा मेरा है, चाहे वो पिता का आत्मा हो या पुत्र का आत्मा हो, सभी मेरा है। जो आत्मा पाप करता है वो आत्मा मरेगा। और भजन संहिता 22:29 कहता है, हर एक आत्मा अपने आप जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि हर एक तो पाप किया है। तो ये सच्चाई आज हमने पढ़ा है, और इस सच्चाई से हम बहुत सारा ज्ञान मिला है परमेश्वर के वचन से। फिर भी हमारे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सारे सवाल के जवाब हम अगले हफ्ते और उसके बाद हफ्ते मिलेंगे। परमेश्वर ही आप सभी को आशीर्वाद करें। आमीन।